राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। तो कार्तिक के महीने में योगेश्वरी जीवन कृष्ण प्रभु ने अपने घर के ऊपर सत्संग का आयोजन करके आप सबको बुलाया है और हरि कथा और हरि कीर्तन करने के लिए हमको सेवा किया है, दिया है। और विकी प्रभु ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया और अमन देव प्रभु और सब भक्त आए, राम विजय, सबका धन्यवाद। कार्तिक का महीना श्री कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए बहुत उत्तम और सरल साधन है। आज आठवां दिन कार्तिक का है, आज अष्टमी बोलते हैं, इस अष्टमी को बहुला अष्टमी बोलते हैं। वैसे बहुला अष्टमी के दिन राधा कुंड का प्रकट्य हुआ। कुंड कहते हैं जहां पानी इकट्ठा होता है, जैसे तालाब होता है, यहाँ आपके गंबासा जैसे है, गंबासा बोलते क्या, गंबासे, तो तालाब हो गया ना पानी का, ऐसे राधा कुंड है एक ब्रज में। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं पूरी दुनिया में मथुरा मंडल सबसे उत्तम है, क्योंकि भगवान वहां प्रकट हुए, भगवान अवतार मथुरा में लिया, इसलिए दुनिया में सबसे उत्तम जगह मथुरा है। लेकिन मथुरा में भी सबसे उत्तम वृंदावन है। बोला क्यों? बोला वहां भगवान घूमे हैं, गली गली में, वन वन में घूमे हैं। बोला वृंदावन में भी सबसे उत्तम गोवर्धन है। बोला क्यों? बोला उसको भगवान ने अपने हाथ के ऊपर उठाया। और वृंदा और गोवर्धन में भी सबसे श्रेष्ठ राधा कुंड है, क्योंकि वो राधा रानी से अभिन्न है, इज नॉट सेपरेट फ्रॉम राधा रानी। जितनी राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है, उतना ही उसका कुंड भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है। तो आज उस राधा कुंड का प्रकट्य, मीन्स टुडे राधा कुंड मैनिफेस्टेड। और बहुला अष्टमी एक गाय थी, उसका नाम था बहुला। वो जंगल से चर के आ रही थी, एक शेर ने उसको कहा तुम्हें खाऊंगा। शेर खाने के लिए गाय को आया, गाय ने कहा आप खाओ, आपका मैं भोजन हूं, वैसे आप जंगल के राजा हो और कोई भी पशु है वही तो आप खाते हो, और क्या खाते हो, रोज शेर क्या खाता है, हलवा पूरी थोड़ी खाता है, गुलाब जामुन रसगुल्ला कुछ नहीं खाता है, तो कोई ना कोई पशु मार के खाता है, वो रोज खाता है, जो भी आएगा उसको खाएगा, उसका वो भोजन है। लेकिन गाय ने कहा मेरा बच्चा घर में, मेरा बछड़ा भूखा है, उसको दूध पिला के मैं वापस आऊंगी। बोला वापस कोई कभी आया? शेर के मुंह से कभी कोई वापस आएगा? मौत के मुंह में वापस कौन आएगा? बोला मैं आपको वचन देती हूं कि मैं बच्चे को दूध पिला के वापस आ जाऊंगी। शेर ने विश्वास किया, गाय वापस घर में आई, बच्चे बछड़े को दूध पिलाने के लिए बुलाया, गाय की आंखों में आंसू आ रहे थे, तो बछड़े ने पूछा माँ आप रो क्यों रही हो? बोले बेटा आज तुम आखिरी बार मेरा दूध पी ले, क्योंकि इसके बाद मैं वचन दे के आया हूं शेर के पास जाऊंगी और शेर मेरे को खा लेगा। बोला माँ आप क्यों शेर के पास जाएंगी? आप दूध देती हैं मुझे तो पिलाती हैं, लेकिन घर के ब्राह्मण को भी पिलाती हैं। आप जाएंगी तो ब्राह्मण को दूध कहां से मिलेगा? मैं तो अभी छोटा बच्चा हूं, मैं दुनिया में क्या किया है, किसी काम का तो हूं नहीं, सिर्फ दूध ही तो पीता रहता हूं। मैं जाता हूं शेर को भोजन बनने के लिए, आप घर में रहो और घर वालों को दूध देना। माँ और बेटे में बात हो रही है तो ब्राह्मण कह रहा है क्या बात है, झगड़ा क्यों कर रहे हो, दूध नहीं पी रहे हो, बछड़े को बोला तुम जल्दी दूध पियो मैं दूध निकालूं। गाय दूध आदमी को नहीं देती है, बछड़ा गाय को पहले दूध पीता है, तब गाय का दूध नीचे आता है, फिर बछड़े को हटा के गाय का दूध लेना पड़ता है। तो ब्राह्मण ने जब ऐसे सुना तो ब्राह्मण ने कहा गाय बोलती है मैं शेर का वचन दे के आई हूं, जाऊंगी शेर मुझे खाएगा, और ये बछड़ा बोलता है माँ आप मत जाओ, आप ब्राह्मण को दूध दो मैं जाऊंगा। ब्राह्मण ने बोला आप दोनों क्यों जाएंगे, आप तो पशु हैं, आपकी रक्षा करना मेरा धर्म है, आप दोनों नहीं जाएंगे मैं जाऊंगा। ब्राह्मण ने बोला मैं जाता हूं, शेर खाए तो मेरे को खाए, आप तो पशु हैं, आपने कौन सा अपराध किया। तो तीनों ऐसे आपस में झगड़ा करते करते शेर के पास तीनों पहुंचे, और शेर को गाय कहती है मेरे को खाओ, बछड़ा कहता है मेरे को खाओ, और ब्राह्मण कहता है मेरे को खाओ। इन सबको देखकर वो शेर तो साक्षात विष्णु था, परीक्षा ले रहा था, और वो बछड़ा नारद जी था, और एक पिपलायन ऋषि ऐसे कुछ नाम था, ये सब प्रकट हुए। ये दिखाया कि दूसरे के लिए अपनी जिंदगी में कुर्बानी कौन देता है। अभी भी बहुत पुरानी बात है, 40 साल 50 साल पहले हम देखते थे घर में, आज के दिन माताएं उपवास करती थी कि बच्चे की रक्षा हो। बछड़ा बच गया ना उससे, तो माएं उस गाय की तरह बच्चे की रक्षा के लिए उपवास किया करती थी। हमारी माताजी के पास 100-200 स्त्रियां कथा सुनने आया करती थी। दीन बंधु जी ये कथा सुनाते हैं, बहुला अष्टमी के दिन बहुला गाय की अपने बछड़े से प्रेम और बछड़े का मां से प्रेम और मालिक का दोनों से प्रेम कि गाय की रक्षा करनी चाहिए। तो ये बहुला अष्टमी का, तो ये तो सारे देवता थे और भगवान की कृपा प्रकट हुई और शिक्षा देने के लिए। तो आज के दिन ये बहुत पुरानी पौराणिक कथा है। और भगवान भागवत में 36वें अध्याय में 36 चैप्टर में राधा कुंड के प्रकट्य का संकेत आता है। और रासलीला खत्म हो जाती है 29, 30, 31, 32, 33 33 चैप्टर तक रासलीला समाप्त होती है। तो रासलीला से पहले भगवान ने, श्री कृष्ण ने पहले ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहे थे उनको शिक्षा दी। ब्राह्मण पत्नियों को उत्तम बताकर यज्ञ करने वालों को बताया नीचे स्तर के हैं। देखो यज्ञ तो करते हैं लेकिन किसके लिए करते हैं ये मालूम नहीं है। भगवान के लिए करते हैं, भगवान सामने खड़ा है मांग रहा है उसको नहीं दे रहे। किसके लिए यज्ञ कर रहे हो? भगवान के लिए। भगवान मांग रहा है बोला उसको नहीं देंगे, तो ये तुम्हारा यज्ञ किस काम का? तो पहले तो भगवान ने ब्राह्मणों को, ब्राह्मण पत्नियों के द्वारा शिक्षित किया। फिर रास्ते में जाते हुए ग्वाल बालों को कहा, देखो ये पेड़ कितने अच्छे हैं, इंसान से अच्छे हैं, ब्राह्मणों से भी अच्छे हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं, लकड़ी देते हैं, फूल देते हैं, इंसान क्या देता है? कुछ भी नहीं देता। और ये शिक्षा दे कि भगवान ने इंद्र के यज्ञ को बंद कर दिया और इंद्र नाराज होकर बरसात इतनी किया कि वृंदावन सारा डूब जाएगा। भगवान ने गोवर्धन को धारण करके 7 दिन अपने सारे ब्रजवासियों की रक्षा की। इंद्र हाथ जोड़ के आया, भगवान का अभिषेक किया, तो अब देवता भी भगवान ने कंट्रोल में कर लिए, ब्राह्मण कर लिए, देवता कर लिए। और फिर सारे ब्रजवासियों को, नंद बाबा और गोपों को वैकुंठ का दर्शन कराया। सबने वैकुंठ का दर्शन किया। अब तो कहते कृष्ण साधारण व्यक्ति तो नहीं है, ये वैकुंठ दिखा सकता है। तो अब न तो ब्राह्मण कृष्ण की रासलीला के ऊपर उंगली उठा सकते हैं, न देवता इंद्र आदि वरुण आदि उंगली उठा सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, न ही ग्वाल बाल और गोपगण बड़े, क्योंकि उनको वैकुंठ दिखा के भगवान ने सब दर्शन कराए। तो ये सब रासलीला से पहले भगवान ने गोपियों की मन इच्छा पूरी करने के लिए भूमिका बनाई, प्रीफेस बनाया। रासलीला करने के बाद भगवान को मालूम था कि अब मथुरा जाना है, अब हमारी लीला वृंदावन की समाप्त होने वाली है। उससे पहले भगवान ने 3 बचे हुए असुरों को मारा। क्यों? कि मैं चला जाऊंगा तो ब्रजवासी मेरी जुदाई में, हो सकता है कोई दूसरा आदमी इनको धर्म के रास्ते से हटा ना दे, वेद के नाम में, धर्म के नाम में, योग के नाम में इनको मेरी शुद्ध भक्ति से विचलित न कर दे। इसलिए 3 असुरों को मारा। एक घोड़े के रूप में आया, उसका नाम है केसी। वो घोड़ा हिनहिनाता आया। ये केसी एक बार वेदों को चुरा के जा रहा था, घोड़ा हाईग्रीवा उसका नाम था, वेद को चुरा के जा रहा था। तो ये केसी हिनहिनाकर वेद की वाणी से लोगों को कहते हैं, नहीं नहीं ये मंत्र उच्चारण करो, भगवान की भक्ति से विचलित करता है। तो कभी कभी वेद के नाम पे शुद्ध भक्ति से लोगों को हटाकर कर्मकांड में लगाया जाता है। तो इसलिए पहले भगवान ने अघासुर का वध किया, सॉरी क्या नाम बताया, केसी का वध किया। फिर एक व्यमासुर, व्योमासुर का वध, ये योग अभ्यास, आंखें बंद करके सबको ले जाके भगवान के भक्तों को खेल रहे हैं, उनको ले जाके एक गुफा में बंद कर दे और ऊपर पत्थर दे दिया, जैसे गुफाओं में जाके योगी अभ्यास करते हैं। तो ये कोई योग का ढोंग करके हमारे भक्तों को मेरी शुद्ध भक्ति से विचलित न कर रहे। आजकल दुनिया पूरी में योग 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 चल रहा है, ये योग भगवान की भक्ति से भगाने वाला है। और तीसरा राक्षस आया था वो बैल के रूप में। बैल किसको कहे? हाँ, आक्स, बैल, बुल। और भागवत में बुल धर्म का प्रतीक है। पहले स्कंद में परीक्षित महाराज ने एक गाय और बैल को देखा था, गाय पृथ्वी और बैल धर्म, तो बैल धर्म का रूप है। अब ये बैल आया किस वक्त आया? भागवत में तो इसका वर्णन है दिन में आने का, विष्णु पुराण आदि से ऐसा संकेत मिलता है कि रात को 9:30 बजे के करीब भगवान ने बांसुरी बजाई और उस स्थान के ऊपर जहां अभी राधा कुंड है, वो अरिष्टा ग्राम उसका नाम हो गया बाद में, बांसुरी बजाई, गोपियां आई, रासलीला की तैयारी होने लगी। इतने बीच में एक बहुत बड़ा काला बड़ा सा बैल वहां आया और बैल का नाम था अरिष्टासुर, अरिष्टासुर। और वो बैल इतना क्रोध में था, आंखें लाल थी और अपने खुरों से जमीन को खोद रहा था और पूछ हिलाता था, जैसे आपके यहां देखते हैं कभी बादल इतने नीचे होते हैं कि आपके पहाड़ों के ऊपर से घूमते हुए दिखते हैं, हाँ, कभी मुड़िया पार नहीं दिखता है, ऊपर बादल दिखते हैं, और उसको पूछ ऊपर करे तो बादलों को हिला दे, इतना बेल बड़ा था वो। और वो बेल जब जमीन के ऊपर हिल रहा था तो जमीन कांप रही थी जैसे अर्थक्वेक हुई है, और भयभीत हो गए, कई गायों के बछड़े बच्चे गिर गए पेट से, स्त्रियों का मिसकैरेज हो गया, लोग भयभीत हो गए, भागते भागते कहने लगे कृष्ण कृष्ण हमारी रक्षा करो, कृष्ण हमारी रक्षा करो। कृष्ण एक अपने भक्त के कंधे के ऊपर हाथ रख के खड़े थे, बोला चिंता मत करो, चिंता मत करो। और बैल की ओर देखकर कहा, पापी अपराधी दुष्ट दुराचारी, तुम्हारे को युद्ध करना है तो मेरे से करो, क्यों ब्रजवासियों को परेशान कर रहे हो? वो तो बड़ा क्रोध में हो कि आंखें लाल करके सिंगों को जमीन में उखेड़ मिट्टी खोड़ता हुआ कृष्ण की तरफ आया। कृष्ण ने धक्का दिया, बैल जाके दूर गिरा, उठा फिर वापस कृष्ण को धक्का दिया, दूर तक कृष्ण गए, सिंग से पकड़ के कृष्ण ने दूर फेंका, फिर उठ के वापस आया। अब कृष्ण ने पूंछ से पकड़ के बैल को घुमाया घुमाया घुमाया, ऐसा घुमा के दूर फेंका जैसे बच्चा कोई करमंडल नहीं होता, ऐसे घर में आप होता ना दूध उठाने का, ऐसे बर्तन नहीं होते, बर्तन ऐसे होते ना ऊपर पकड़ने के, क्या बोलते हैं उसको, डोली जैसा होता है एक, हाँ, छोटी सी डोली, वो बच्चा लेके ऐसे घुमाए फिर दूर फेंके, कितनी दूर जाएगी, ऐसे उस बेल को उठा के घुमा के दूर फेंका और फिर जाके लात मार के सिंग उखाड़ के बेल को मार दिया। खून बेल के मुंह से रक्त निकलने लगा, खून निकलने लगा, हाँ, ब्लड और बेल, बेल लिखा है पिशाब और गोबर करने लगा ऐसे, कि जिस जब मौत नजदीक होता है ना तो स्टूल और यूरिन, बस दुनिया में आए तब भी स्टूल यूरिन, जाएगा तब भी, दुनिया को हमने कुछ नहीं दिया, केवल ये स्टूल यूरिन कचरा ही दिया, मरते हुए सबका ये हाल होता है। और बैल को मौत अपना नजदीक दिख रहा था, बैल मर गया। तो सब का भय तो खत्म हो गया और कृष्ण रासलीला में गोपियों की तरफ गए, गोपियों ने बोला हमको हाथ मत लगाना, तुमने बैल का मर्डर किया है, गाय और बैल को मारने वाला पापी हो गया। ये बड़ा आश्चर्य लगता है कि भगवान ने एक बैल को मारा कृष्ण ने, एक बछड़े को मारा बत्सासुर को, पहले पहले एक स्त्री को मारा पूतना को, और राम को भी पहले एक स्त्री को ही मारना पड़ा तारका को। तो ये बड़ा अद्भुत भगवान की लीला है कि अधर्म के नाम में कोई भी आए तो उसको छोड़ेंगे नहीं। तो बैल धर्म के रूप, ये भगवान का इसमें शिक्षा ये है कि मैं चला जाऊंगा, ब्रजवासियों को कोई धर्म में धोखा ना दे। असुर बन के आया और बैल बन के आया तो धर्म धोखा दे रहा है। अब धर्म के नाम में कितना इस दुनिया में धोखा हो रहा है, धर्म के नाम में धोखा करने वाले सब अरिष्टासुर है। अब कृष्ण को गोपियां हाथ लगाने, बोला हमको हाथ मत लगाओ, क्या करूं, राजा रानी बोलते पूरे ब्रह्मांड में जितने तीर्थन जाके सब में स्नान करके आओ, गो इन ऑल प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज एंड टेक बाथ इन ऑल द होली प्लेसेस. कृष्ण बोला कहां कहां इतना मैं दुनिया में भटकूंगा, मैं यही सब तीर्थों को बुलाता हूं. वो अपना हील से भगवान ने एक खड्डा बनाया, तीर्थों के बाद इधर आओ सब, तीर्थ और तीर्थों के जो अधिपति हैं तीर्थ राज वो सब वहां प्रकट होके हाथ जोड़ के खड़े हो गए. भगवान क्या आ गया है, बोला सब इस खड्डे में अपना जल डालो. जल डाला, भगवान ने नहाया, गोपियों को बोला अब बस अब सब तीर्थों में स्नान हो गया. गोपियों ने बोला हम नहीं मानते हैं ये तीर्थों का स्नान है. और भगवान ने कहा ऐसा आपने कभी देखा कि सब तीर्थ एक जगह आए हो, ये देखो मेरा कुंड बन गया श्याम कुंड, सब तीर्थ का जल इसमें. राजा ने तुम्हारा कुंड जाने तुम जाने, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, हम अपना कुंड बनाएंगे और आपसे कुंड से बहुत अच्छा कुंड बनाएंगे. गोपियों को बोला जल्दी करो, सहेलियों को बोला अपनी कंगनी निकालो, कंगनी निकाल के खुदाई शुरू कर दी. और खुदाई शुरू करके और बोला हम अपनी जल लाएंगे, इसमें जल कहां से लाओगे, मानसी गंगा से जल लाएंगे. मानसी गंगा में एक एक गोपी मानसी गंगा में खड़ी हुई, एक जहां खड्डा खोदा था वहां खड़ी हुई, बीच में सब लाइन गोपियों की खड़ी हो गई. मटका एक भरे दूसरे को दे, दूसरी तीसरे को दे, उठा के लाने की जरूरत नहीं, एक से दूसरा पूरी लाइन मटकों की, सब मटके डाल के और कुंड को भरा. अब भगवान श्री कृष्ण देख रहे हैं सब तीर्थों को, कहा आप जाके राधा रानी को प्रार्थना करो. सब तीर्थ साक्षात रूप में गंगा जी जमुना जी गोदावरी पाताल से भोगवती आई और ये सब तीर्थ हाथ जोड़ के राधा रानी के चरणों में प्रार्थना करने लगे. राधा रानी बोले आपको क्या इच्छा है, बोला आप हमारे जल को स्वीकार करेंगे तब हमारा जीवन सार्थक होगा. तब राधा रानी कहा ठीक है आप अपना जल हमारे इस कुंड में लाओ. तब सब जल जो श्याम कुंड में था कृष्ण के वहां से रास्ता बना के और राधा कुंड में सारा जल आया. तब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को कहा आज के बाद ये तुम्हारा कुंड तुमसे अभिन्न है और इसमें मैं नित्य स्नान करूंगा और हम आपके साथ जल क्रीड़ा इसमें करें. दोपहर के समय राधा और कृष्ण रोज राधा कुंड के ऊपर जाते हैं, दोपहर को 12 और 3 के बीच में ऐसे ये टाइम जो है राधा कुंड में प्रतिदिन राधा कृष्ण का लीला होती है. आज भी तो ऐसे राधा कुंड का प्रकट्य हुआ ये राधा कुंड और श्याम कुंड. आज भी वृंदावन में जाएंगे तो दोनों ये कुंड गोवर्धन की आंखें मानी जाती है. गोवर्धन मोर की इज लाइक ए पीकॉक और उसकी दोनों आंखें राधा कुंड और श्याम कुंड है. तो इस राधा कुंड का आज के दिन पे प्रकट्य हुआ था. तो इसको बहुला अष्टमी का रात को, ये रात को 9:30 बजे बेल आया और कुंड तैयार हुआ 11:55 पे. तो 12 बजे आज रात को लाखों लोग होंगे राधा कुंड के ऊपर. बहुत इतना आपके यहाँ जहाँ जितना भीड़ होती है शिवरात्रि को वहां ना, इससे इतने लोग वहां होंगे रात को स्नान करने के लिए जगह नहीं होगा. मैं तो एक बार गया था इतना सांस दब गया लोगों के धक्का धक्की में, बहुत बड़ा तो बहुत भीड़ होगी लेकिन लोग जाते हैं. हमारी परिक्रमा वहां रुकी होगी ब्रजमंडल की, आज सब स्नान करेंगे रात को उधर. तो आज राधा कुंड का प्रकट्य दिवस है तो आज के दिन ऐसे राधा कुंड प्रकट हुआ और भगवान ने इस धर्म के रूप में धोखा देने वाले बैल अरिष्टासुर का उद्धार किया. फिर राधा कुंड और श्याम कुंड कुछ समय के बाद भगवान के जाने के बाद ये सब दिखाई नहीं देने लगे. चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पहले जब वृंदावन का दर्शन करने आए तो एक दिन घूमते हुए कहते हैं यही राधा कुंड, एक खेत था चावल का खेत था, चावल के खेत के अंदर पानी का खड्डा था, बोला राधा कुंड राधा कुंड और उस खड्डे के अंदर ना आया. तब सबको मालूम हुआ कि ये राधा कुंड यहां था. तो फिर वहां थोड़ी खुदाई करके थोड़ा सा कुंड बना के रखा. लेकिन चैतन्य महाप्रभु के बहुत त्यागी और वैरागी गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी जब राधा कुंड के किनारे पे बैठ के भगवान का नाम जप किया करते थे तो उनके मन में एक दिन आया कितना सुंदर स्थान राधा कुंड और श्याम कुंड एक खड्डे जैसा पड़ा है, इसको सुंदर बनाना चाहिए. फिर मन में आया कि मैं तो घर छोड़ के सब कुछ छोड़ के यहाँ भजन करने आया हूँ, अब बैठ के यहाँ फिर सीमेंट मंगाऊं ईंटें मंगाऊं बैठ के कंस्ट्रक्शन शुरू करूं, ये तो इस काम के लिए तो मैं आया नहीं हूं घर से. लेकिन बात तो भूल गए राधा रघुनाथ दास गोस्वामी तो ये बात भूल गए, लेकिन भगवान ने जो हृदय में बैठा था ये रघुदास गोस्वामी के दिल की बात को सुन लिया. एक भक्त की इच्छा पूर्ण हुई थी तो वो धन लेकर गया था बद्रीनाथ में कि भगवान बद्रीनाथ बद्री नारायण आपने कृपा करके मेरी इच्छा पूर्ण की है, ये मैं आपको भेंट लाया हूं। बद्रीनारायण ने रात को उसको कहा कि तुम ये भेंट ले जाओ और राधा कुंड में रघुनाथ दास गोस्वामी को दे दो, वो मेरी सेवा में लगाएंगे। वो पैसे वहां से वापस एक महीना पैदल चलकर बद्रीनाथ से वृंदावन आया, राधा कुंड में आया, रघुनाथ दास गोस्वामी को कहा ये धन आप लीजिए। बोला मैं क्या करूं धन को? बोला ये बद्रीनारायण भगवान ने भेजा है, नर नारायण ने, ये आपको कोई सेवा में। तब याद आया कि मुझे तो भूल गया, भगवान ने नहीं भूला, वो अपने कुंड का जीर्णोद्धार चाहते हैं। तब लोगों को लगाकर पैसा वो लगाकर बहुत सुंदर राधा कुंड निर्माण हुआ। और श्याम कुंड की जब खुदाई शुरू होने लगी तो रात को सोए हुए रघुनाथ दास गोस्वामी के स्वप्न में पांच पांडव आके खड़े होके कहते हैं बाबा बाबा, हम भगवान श्री कृष्ण की लीला का यहाँ दर्शन करते हैं, इसलिए पेड़ के रूप में यहाँ रहते हैं। कल श्याम कुंड की खुदाई के समय आपके काम करने वाले हम पेड़ों को काटेंगे, हमारी रक्षा करो। सुबह रघुनाथ दास गोस्वामी उठा, काम करने वालों को कहा ये पांच पेड़, एक दो तीन चार पांच, इसको मत काटना, इसलिए श्याम कुंड स्क्वायर नहीं है, वो जहां जहां पेड़ है वहां छोड़ दिया गया है। तो आज भी बहुत सारे भक्त पेड़ के रूप में वृंदावन में उद्धव लता के रूप में रहता है, भगवान का परम भक्त भगवान की लीलाओं का रस आस्वादन कर रहे हैं। आज भी जो बड़ा राधा कुंड दिख रहा है इसके अंदर एक छोटा सा कुंड है, उसका नाम है कंकण कुंड, जो असल में कंकण से, कंकण का मतलब है चूड़ी, तो गोपियों ने चूड़ी से कुंड की खुदाई की थी। अभी 6-12 महीने पहले सारा राधा कुंड का पानी निकाल के सफाई की थी, तब कंकण कुंड निकला था, और उधर फिर इतनी मिट्टी थी, सब भक्तों ने मिट्टी उठा के बाहर निकाली थी। उस मिट्टी का एक बार तिलक महाप्रभु ने लगाया था राधा कुंड का, इसलिए बहुत से कुछ भक्त काला तिलक राधा कुंड का लगाते हैं। इस तरफ कंकण कुंड है, और श्याम कुंड का फिर जीर्ण उद्धार कराया था वज्रनाभ ने, भगवान श्री कृष्ण के परपोते ने। बड़े श्याम कुंड के अंदर एक छोटा सा कुंड है, उसका नाम है वज्र कुंड, वो भी इस बार हमने देखा जब उसकी सफाई हो रही थी। तो आज बहुला अष्टमी का ये भगवान श्री कृष्ण के प्रिय श्याम कुंड और राधा कुंड का और अरिष्टासुर का वध और बहुला गाय बछड़े के लिए, प्रेम अपनी माँ का बेटे के लिए, और वीरभद्र श्री नित्यानंद प्रभु के पुत्र का आविर्भाव, चेतना महाप्रभु स्वयं उसमें प्रवेश हुए थे ऐसा माना जाता है, क्षीरोदक्षाई विष्णु के वो अवतार थे, इस धरती के ऊपर आए थे, और उन्होंने नरोत्तम दास के खेतुरी में, खेतुरी फेस्टिवल के गौर पूर्णिमा की पहली बार उत्सव में वीरभद्र ने पर्वत प्रवचन करके और सब वैष्णव को फिर एक बार इकट्ठा किया था जानवा माता के साथ। तो ये सब आज की बहुत बड़ी सुंदर ब्रज की कथाएं। अब यहाँ वाणी को विराम देते हैं, सब दीप भगवान दामोदर को अर्पण करेंगे, आरती कीजिए, कीर्तन कीजिए, फिर प्रसाद लीजिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आरती दीप।